नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 94 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाड़मेर और दौसा जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोयम्बटूर में INDI गठबंधन की रैली का नेतृत्व करेंगे। किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने पहले दिन 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 संसदीय सीटों के लिए चुनाव होंगे। गुजरात की सभी 26 सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 सीटें, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की 2-2 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में बैतूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार की मृत्यु के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। तीसरे चरण के लिए इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन भरे जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। इस बीच पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता विभिन्न राज्यों में रैलियां कर रहे हैं। इस चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और बाड़मेर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में इस विजय शंखनाद जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोदी शाम में दौसा में रोड शो का नेतृत्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
पहले चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब कुछ दिन शेष बचे हैं, इसलिए कांग्रेस और भाजपा प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में, विनय सहस्त्रबुद्धे जयपुर में, विजय राहटकर सिरोही में, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी बड़ी सादड़ी में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा पार्टी के करीब 1 दर्जन वरिष्ठ नेता विभिन्न स्थानों पर प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा आज अलवर और दौसा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
उत्तराखंड में भी विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज गढ़वाल और कुमाऊं संभागों में चुनावी रैलियां करेंगे। वे चंपावत, चमोली और काशीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवार के सदस्य या तो सेना की नौकरी में कार्यरत हैं या फिर सेना से सेवानिवृत्त हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी आज हरिद्वार में कई स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा नागालैंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा पार्टी अध्यक्ष का कल चुमोकेदिमा जिले के एग्री एक्सपो में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री नड्डा NDPP नेता और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और अन्य पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस PDA विधायकों और नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। वहीं सिक्किम में लोकसभा की एकमात्र और विधानसभा की 32 सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाजपा, कांग्रेस और नवगठित सिटीजन एक्शन पार्टी प्रचार में जुटे हैं। यहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली में एक चुनावी रैली में कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव विकसित भारत अभियान को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के 10 करोड़ किसानों को PM किसान सम्मान निधि मिल रही है और यह पहली बार हुआ है कि किसी सरकार को मवेशियों की भी चिंता हुई है। प्रधानमंत्री ने कल ऋषिकेश में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल राजस्थान के अनूपपुरगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि देश में इस समय दो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, लेकिन अन्य मुद्दों को महत्व दिया जा रहा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में कई रैलियां की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कल गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज तिनसुखिया और सोनितपुर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बिहार में पूर्णिया संसदीय सीट पर 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भौगोलिक रूप किशनगंज, कटिहार और अररिया जैसे सीमांचल के जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला पूर्णिया पश्चिम बंगाल और नेपाल सीमा के काफी करीब है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को पूर्णिया सहित किशनगंज, भागलपुर, बांका और कटिहार के लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पर इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल सहित 7 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। एनडीए की ओर से जदयू ने अपने मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा को फिर से प्रत्याशी बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार सरकार की पूर्व मंत्री बीमा भारती चुनावी मैदान में है। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में सभी की नजरें महागठबंधन के बागी उम्मीदवार और यहां से 3 बार सांसद रह चुके राजेश रंजन और पप्पू यादव पर टिकी है। पूर्णिया संसदीय सीट का इतिहास देखें तो यह लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही, लेकिन 1984 के बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। बाद के चुनाव में भाजपा ने 3 बार और जनता दल यूनाइटेड ने यह सीट 2 बार जीती है। पूर्णिया जिले के साथ इस संसदीय सीट का विस्तार कटिहार जिले में भी है। पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोढ़ा की विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल इसमें से 5 पर कब्जे के साथ एनडीए का प्रभुत्व है। सबसे अधिक 3 बार भाजपा ने यह सीट जीती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 2 सीटें रुपौली और धमदाहा पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने कस्बा की 1 सीट जीती थी। मक्का उत्पादन के बड़े क्षेत्र पूर्णिया में खेती किसानी लोगों की आय का बड़ा जरिया है। बेरोजगारी, बुनियादी विकास का अभाव, गरीबी और पिछड़ापन इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका दशकों बाद भी समाधान नहीं हो सका है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों की घोषणा के पश्चात एक माह से भी कम समय में निर्वाचन आयोग ने 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी और साजो सामान बरामद किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस बीच राज्य में प्रचार अभियान जोरों पर है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 103 करोड़ 33 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। इनमें 13 करोड़ 77 लाख रुपए की नकद राशि, 24 करोड़ 64 लाख रुपए की शराब, करीब 19 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स भी शामिल है। मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों के दौरों के तहत आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधी और छिंदवाड़ा में प्रचार करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सांसद विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव विदिशा और रायसेन में प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी INDI गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए आज कोयम्बटूर का दौरा कर रहे हैं। आशा है कि उनके साथ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता MK स्टालिन भी मंच साझा करेंगे। हैदराबाद में कल प्रवर्तन अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 34,39,000 रूपये से अधिक की नकद धनराशि बरामद की है। चुनाव की घोषणा के बाद से हैदराबाद में अब तक कुल 13,31,00,000 रूपये से अधिक की धनराशि जब्त की जा चुकी है। अधिकारियों ने अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 144 मामले भी दर्ज किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन में जापान और फिलीपींस के नेताओं के साथ पहली बार त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बैठक के बाद जारी संयुक्त दृष्टिपत्र में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में तीनों देश समान और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में शामिल हुए और आने वाले समय में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। संयुक्त वक्तव्य में नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर चिंता प्रकट की। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने भारतीय व्यापारिक समुदाय से नेपाल में निवेश पर विचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हिमालयी राष्ट्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला नंबर है। नई दिल्ली में आयोजित इंडस्ट्री आउटरीच मीट में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल का सबसे बड़ा निवेशक भारत है। नेपाल में कुल निवेश का एक तिहाई हिस्सा भारत से है। खेलों में किर्गिस्तान के बिश्केक में कल एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने 3 पदक जीते। 19 वर्षीय उदित ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और विक्की ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कुल 5 भारतीय मुक्केबाज मैदान में उतरे थे। रोहित को 67 किलोग्राम भार वर्ग में और परविंदर सिंह को 79 किलोग्राम भार वर्ग में हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल श्रेणी में आकाश दहिया 61 किलोग्राम भार वर्ग में, यश तुषी 74 किलोग्राम, संदीप मान 86 किलोग्राम, विनय 92 किलोग्राम और अनिरुद्ध कुमार 125 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। मध्य भारत में आज हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ वर्षा और आंधी चल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 13 और 14 अप्रैल को कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल को बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है रवि कपूर।
धन्यवाद फरहत। एशिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी, एशियाई विकास बैंक का अनुमान। लगातार 5वें वर्ष चीन से ज्यादा रहेगी भारत की विकास दर, दैनिक जागरण की खबर है। सबसे अधिक साइबर अपराध वाले देशों में पहली बार जारी किए गए साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को विश्व में 10वां स्थान मिला, हिन्दुस्तान की खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है आईफोन में पेगासस जैसे हमले का अलर्ट, एप्पल यूजर्स को किया सावधान, भारत सहित 92 देशों में साइबर हमले का खतरा। युद्धग्रस्त इसराइल के पुनर्निर्माण में पसीना बहाएंगे भारतीय मजदूर, निर्माण क्षेत्र के 6000 से ज्यादा मजदूरों को मिलेगा काम, जनसत्ता की सुर्खी है। हरियाणा में स्कूल बस हादसे का समाचार सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है हरियाणा के महेन्द्रगढ़ में हादसा, 3 गिरफ्तार। अमर उजाला लिखता है बिना फिटनेस की स्कूल बस पेड़ से टकराई, नशे में था ड्राइवर। दैनिक भास्कर ने खास शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है एनीमिया पीड़ित महिलाओं के लिए तैयार हुआ स्वदेशी टीका, चर्चा करने के लिए जुटे दुनिया भर के विशेषज्ञ। राजधानी में भीषण गर्मी के दौरान चिड़ियाघर में जानवरों की विशेष देखभाल करने का समाचार भी जनसत्ता ने प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चिड़ियाघर में विशेष इंतजाम, भालुओं के लिए बर्फ, हाथियों को मिल रहा है खाने में खीरा, तरबूज और नारियल पानी। स्कूलों में वीणा सितार की धुनों पर थिरकेगा बचपन, एनसीईआरटी ने जारी किया कक्षा 3 की गणित सहित 4 पुस्तकों की ई वर्जन, दैनिक जागरण की खबर है।
धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी, 94 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाड़मेर और दौसा जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोयम्बटूर में INDI गठबंधन की रैली का नेतृत्व करेंगे। अमरीका ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रीय विवादों के बीच जापान और फिलीपींस के साथ पहली बार त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और खेलों में किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने पहले दिन एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। वहीं आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मुंबई में 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।